कृष्ण बिना स्त्रियों के रह नहीं सकते। देवभू चौरसायन, इस पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में, रसातल लोक में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो कृष्ण के लिए अलभ्य हो। सभी अपने आप बिना मूल्य के ही उसके चरणों में उनकी हंसी मुखारविंद को देख करके अपने आप अर्पित कर देंगे। जब लक्ष्मी जी उनके चरणों की उपासना करती हैं, तो हम ग्वाली ने जो बनचरी हैं, हमारे लिए बात ही क्या, हमारे लिए दूध क्यों भेजेंगे? हम लोग नहीं समझते कि हम लोगों के लिए ये दूध भेजेंगे। यदि मथुरा में ऐसा कोई नहीं मिलती तब तो हो सकता था जी हमारे चिंता करते, इसलिए हम लोगों की क्यों चिंता करें? जब उनकी इस प्रकार से निष्ठुरता सठता धूर्तता की बात बतलाई गोपियों ने, राष्ट्रीमती राधिका ने, तो ब्रह्मा पुनः अपने स्वाभाविक भ्रमरत्व के हिसाब से पुनः उनके चरण कमलों में कमल मान करके प्रवेश करने की चेष्टा है। तो श्रीमती जी ने समझा कि यह आप अन्य विनय कर रहा है, नहीं आप ऐसा ना करें, आप पुरुष का मत हो, मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मान जाइए, उनसे विरोध करना उचित नहीं। उसी के बदले में श्रीमती राधिका जी उसके भाव को देख करके, उसकी नम्रता विनय को देख करके पुनः कहने लगी, विसर्ज श्री रसिपादम वेद्महम चाद्वारई अनुनय विदुषो ते अभेद्य दौत्तर मुकुंदात् स्वकृति विशिष्टापत्य पत्तन्न लोका दस्विजद अकृत चेता किन्नु संदेहमस्मि। हट जादू, पैर छोड़, मत छोड़, हट जा, भाग जा, तुमको बार बार कहती हूं कि हमारे पैरों में पग पड़। अच्छा अब मैं समझी, विसर्जी श्री रसिपाद वेद न, अब मैं समझ गई। उन्होंने क्या समझ गई, भ्रौण जैसे कह रहा, पूछ रहा है कि क्या समझ गई? ये समझ गई वो कह रहा है भ्रमर, लक्ष्मी कोटि, लक्ष्मी लक्ष्मी कोटि निर्मल छलिंग नखर दीते, अह कृष्ण की प्रियाएं लाख लाख कोटि कोटि लक्ष्मी भी आपके चरणों की बलिहारी जाती है। देवी सत्यम तम अपराध है, उन्होंने तुम्हारे प्रति, अब तक मैं नहीं समझ रहा था किंतु तुम्हारे बातों को सुनकर के मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच में उन्होंने तुम्हारे चरणों में अपराध किया। सुंदर तुम्हारा मन है, सरल सीधी है, और तुम्हारे प्रति इतना गंभीर अपराध नहीं किया, किंतु देवी क्षमा भी तो आप लोगों का भूषण है, इसलिए आप कृपा करके उनको क्षमा कर दें। मानो इस तरह से वो भ्रमर भनभन कर रहा है, क्षमस्व आप उनको क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम कर रहा हूं। श्रेषी धतम मम पाद पद्म विसुजतात, दौड़ हट जा, चला जा यहां से, एक तो पवित्र और तुम उनका कपट का कपट दूत, हमारे चरणों को छूने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गई क्या समझ गई? लक्षा दिखे ना, ना हम पता लिए। मैं लक्ष्मी नहीं हूं, लक्ष्मी जैसी सीधी शादी नहीं है, वो भोली भाली है, बुद्ध का प्रयोग कम करती है। कल बतलाया था ना, उल्लू की सवारी करती है, इसलिए उनका संघर्ष है, उनमें वो अधिक बुद्धिमती नहीं है, वो विचार विवेक कम है। क्या करना चाहिए? नहीं है, नहीं, हम लक्ष्मी नहीं है जो हमको ये प्रताड़ना करेंगे। तो मुकुंद सकाशात अभ्यत्य, तो मैं समझ गई। क्या समझ गई? तू जरूर मुकुंद का दूत है और उन्होंने तुमको सब कुछ सिखलाया है। चाटुकारी, कैसे चाटुकारी की जाती है? चाटुकारी चापलूसी, मीठी मीठी बातों से ठग देते हैं। कोई अंधा राजा है, काला कलूठा है, बड़ा निष्ठुर है, जैसे मोहम्मद गोरी भाट पर आक्रमण किया और उसने हजारों गांवों को उजाड़ करके कत्ल करके सब कुछ लूट लिया। तो उसका मंत्री बड़ा चतुर था, ये धन तो ले किंतु लोगों को काटना मारना ये तो उचित नहीं, प्रजाएं नहीं रहेंगी तो राजा क्या रहेगा। इसलिए उनके पास में गया, बोला जी महाराज, आप तो बड़े गुणी आदमी हैं, बड़े विद्वान और विचारक हैं, आपके जैसा विचार करने वाला लोग कम है इस संसार में, बुद्धिमान और सुन भी। मैंने दो पक्षियों को उल्लू और उल्ला ने दोनों पक्षियों को आज बात करते हुए मैंने सुना है। एक बेटा पक्ष का है, एक बेटी पक्ष का, दोनों के लड़के में शादी होनी है। उल्लू कहता है, हम तब शादी करेंगे जब भी हमको 100 गांव उजड़े हुए तुम देगा। तो उसका भावी ससुर है समधी, वो कहते 1000 गांव क्या, मोहम्मद गोरी की बचे रहे वो बचे रहे, तुमको 1,00,000 गांव दूंगा उजड़े हुए और जन सुनने सबसे हीन दूंगा। सुन करके बड़ा लज्जित हुआ। यह है चपलासी चापलूसी, एक चापलूसी अकबर बीरबल का जो बैगन कैसा है बीरबल, उसका फल कैसा सुंदर है, कितना गुणी है, क्या कहें बैंगन की बात, बैंगन विशेष गुण युक्त है, वो लपड़े में, रसा में, भरतक में, पकौड़ी में, कचौड़ी में, सब में वो चलता है। देखो वो आया, नंदी जी जा रहे हैं नंदीश्वर, बैंगन में जितने गुण हैं सबके साथ उसकी मित्रता है। काजी किंतु है बेगुण का, महाराजा ने कहा अकबर, हजूर क्या कहते हैं, कोई गुण नहीं है, कोई इसमें स्वाद नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, बेकार की चीज है,
खाने से बेगुण है
और खाने से बीमारी हो जाती है, नहीं होती
है, तभी बेगुण है,
इसलिए वो बेगुण। क्या तुम कहता है, तुम बात तो कोई ठीक है, हाँ प्रभु जी हमारे बात का ठीक है, कैसे अभी तुमने कहा जैसे इसमें कोई गुण नहीं है, और मैंने कहा जैसे इसमें गुण है तो कहें बखान करने लगा, हजूर मैं बैगन का दास नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं, आपको प्रसन्न ना रहा, बैगन को हम प्रसन्न करके क्या करेंगे। यह है चापलूसी। तो मुकुंद सकाशात, मुकुंद माने कौन, मुकुंद बहुत से इसके अर्थ है, मुक्ति तदाति जो मुक्ति देने वाले, और एक है मुक्ति सुखम
उच्चतम
उच्चतम कृत्वा प्रेमानंदम ददाति, मुक्ति को अत्यंत घड़ित बतलाकर उसको सिद्ध कर प्रेमानंद जो देते हैं कृष्णचंद्र जी, मुक्ति बेकार की चीज अनुभूति करा करके प्रेमानंद देते हैं, उनका नाम है मुकुंद। और गोपियां इस अर्थ में नहीं, मुखम कुंद इव सदा प्रफुल्लित, अपने मुख को सब समय प्रफुल्लित करके दूसरों को ठगते हैं, ये मुकुंद का। कैसे ठगा जाता है, कैसे किसी का चीज ले ली जाती है, इनमें श्रेष्ठ है। थोड़ा सा मुस्कुरा दिया बस, जैसे मोहिनी ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और उस शंकर की तरफ में देखा, उनका चित्त चोरी कर लिया और भगी तो ये पीछे पीछे भगने लगे। इस तरह से कहते हैं वो मुकुंद हैं, उन्होंने उनको सिखलाया चाटुकारी विनय करना, नय करना, मधुर रूप में बातें करना, ये जरूर उनसे सीखा है। क्यों? अरे लाखों बार हमने उनको देखा कैसे झूठ बोलते हैं। अरे नहीं, मैं वहां गया ही नहीं, तो तुम्हारे चिन्ह नए अंगों के, पूछ लिया कि कहां है, और अन्य विनय करने लगे। यहां तक कि चरणों में शीश नवाया ना, तो क्या है, स्मर कर खंडन मम शिरसि मंडन, बस सिर झुका दिया उनके चरणों में। कितनी एक दो बार, लाखों बार ऐसे उन्होंने किया, उनके बात पर हमारा विश्वास नहीं है। तुम भी उनसे चाटुकारी, प्रयोक्ति, रचना कौशल तुम सबने उन्हीं से सीखा। दौते दूत कर्म कैसे किया जाता है ये उनसे तुमने सीखा। हमारे पास में आते थे, हम जानते हैं, जब तक अन्न विनय नहीं रहेगा तब तक दौत का काम नहीं हो सकता। विदुषा, तब एक दौत की बात किया जा जाती है, अंगद की। अंगद गया लंका में, खुद गया एकदम अपने सेना के पास से और चला गया एकदम रावण जहां पर बैठा हुआ अपने परिषद में सभाओं में बातचीत कर रहा था, मंत्रणा हो रही थी जयराम को कैसे हराया जाए। वहां पर पहुंच गए, बंदर को देख करके सब लोग डर गए, वही काला मुख वाला तो नहीं है, ये काला मुख वाला नहीं, ये लाल मुख वाला है और लंबी पूछ नहीं है, छोटी सी गोली है। देख करके, तुम कौन है? मैं आपके मित्र का बेटा हूं। कौन हमारा मित्र? आपको याद नहीं है जिन्होंने कांख में आपको रगा करके 6 महीने तक
सिर्फ जब जा करके,
और तुम उसमें नख से काटने ले, मुख से काट करके उसको खुजली मची तो वो उसको याद नहीं रही कि हमारे कांख में कुछ है, और ऐसे थोड़ा सा उठा दिया तो उसमें निकल करके भागे। वही आपके जैसे वीर का जो मित्र है बली महाराज जी, उनका मैं लड़का बालिका, अजय देखिए मैं आया हूं उस सेवा के लिए, आपके लिए आया, हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं। आप हमारे पिताजी के मित्र हैं, आप मेरी सलाह मान लीजिए, सीता जी को आप दे दीजिए और उपहार के साथ में ले जाइए उनके दिन, नहीं तो आपका वंश सर्वनाश हो जाएगा। सुनते ही वो एकदम बिगड़ा, जब बिगड़ा जब दोनों में रोष पूर्वक बातें होने लगी तो इसने कहा कि अच्छा वो तो एक छोटा सा बंदर था, हमारा दूत था जो लंका को जला गया, नौकर चाकर जैसा एक साधारण सा बंदर था, हमने दूत काम के लिए भेजा। मैं सुग्रीव का युवराज हूं, बली का बाली का पुत्र। एक बात करो, तुम्हारे इसमें जितने भी हो एक एक करके हमारे पैर को उठा ले, और नहीं तो सभी मिलकर के उठा ले, मैं सीता जी को आज हार करके चला जाऊं। अच्छा दिन नहीं उठा सका तो तुम सीता जी को वहां पकड़ चले। अच्छा मेघनाथ बोले, अच्छा मैं उठाऊंगा। मेघनाथ आकर के उठाया पैर, वो जमीन में ऐसा आरोप कर दिया, हनुमान की तरफ वीरवर्ष में बैठ गए, पैर उठा ही नहीं। मेघनाथ हार गया, तब तक राम का अच्छा ठीक है मैं चलता हूं, 10 मुख लेकर के और जमीन के चरण छूने के लिए गया। अरे रामचंद्र जी का पैर छुआ, हमारे पैर छुने और वहीं से पृथ्वी को हिला दिया, और हिलाने के साथ ही साथ में रावण के सब 10 मुख सिरों से 10 मुकुट नीचे गिर गए, और उनको एक एक लेकर के यहां से फेंकता गया, दसों मुकुटों को फेंक दिया। ये दस मुकुट उसके दस गुण थे, और तो उसके सब दूसरी दोस्त थे किंतु दस गुण थे उसमें। प्रजाओं का पालन, बहुत बुद्धिमान, बहुत बल, तीक्ष्ण मेधा, ये सब उसमें गुण थे। वो भी गुण लेकर के फेंक दिया और अब रह गया केवल दोषी दोष। अब मारने में सुविधा होगी, ये भी एक गुण है। तो ये सब कहां से सीखे? राम से सीखा। तो वैसे ही कह रहे हैं, जो तुम मुकुंद से ऐसे हंस करके बोलना, विनय के साथ में, नम्रता के साथ में दुख का काम करना, तुम उन्हीं से जरूर सीखा है। शिक्षितवत तव सर्वम शीलादि कम, हम तुम्हारे जितने सुन गुण स्वभाव चरित्र हैं, मैं समझ गई पहले ही। जिस प्रकार से रसोई बनाते समय एक हड़िया में चावल पकाते हैं और एक कलछी से चावल निकाल करके ऐसे करते हैं, समझ जाते हैं कि सब चावल, ऐसे ही मैं समझ गई। तुम्हारे शील स्वभाव चरित्र को सब तुमने उनका अनुकरण किया है, उनसे सीखा है, इसलिए बार बार मना करने पर भी तू मानता नहीं है, हमारे चरणों में सिर नवाता है। ननु स्वामी ने कहा जा, अरे स्वामी जी ऐसा मत कहें, तुम्हारे जो प्राण कोटि से अधिक प्रिय जो कृष्ण हैं, तो माने कृष्ण के प्राण कोटि प्रिय तुम हो, ऐसा हमने सुना है बार बार उनके साथ में रहने से। आपकी सब समय प्रशंसा वो करते हैं और इसी नाते आज मैं आपके चरणों में शीश नवा रहा था बार बार। उनके कोटि कोटि प्राण आपके चरणों में न्योछावरित हो जाते हैं, प्रत्युत्तयामय तिथि, समझे? किंतु मैं तो जैसे सब तीर्थ माने क्या
गुरु है,
मैं आपका प्रिय हूं, उनका भी प्रिय हूं, दोनों मेरे लिए बराबर है। मैं आपका भी भला, आपकी भी भलाई और उनका भी कल्याण मैं चाहता हूं, इसलिए स्वकृते तदर्थम विशिष्टानि, इसलिए दोनों में सुलह नामा हो जाना ही अच्छा है, पैर विरोध को अधिक बढ़ाना उचित नहीं। मैं जानता हूं कि आपके प्रति कितना उनका स्नेह और प्रेम है, इसलिए उनसे बिगाड़ मत कीजिए। ये सुनकर के कुछ और तन गई भाव है इनकी, हमको शिक्षा दे रहा है। तेरे जो मनीब है, प्रभु है, वही हमको शिक्षा नहीं दे सके, अब तू हमको शिक्षा देने आया है। अरे तथर्थ आज हमारी क्या दशा है, उनके लिए हमने अपने पुत्रों को, अपने पतियों को और पति लोक को इस जगत में सब कुछ को हम लोगों ने त्याग कर दिया उनके लिए। जानता है तू, तू तो नया सज करके आया है उनका सखा, हम लोगों ने उनके लिए क्या नहीं किया। माता पिता, माता पिता को छोड़ दिया, कुल धर्म लज्जा सब कुछ उनके लिए हमने छोड़ दिया। यहां पर कह रहे हैं इसे, ये ऐसा क्यों उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं अपत्यानी, हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया, और कोई कहती है माता पिता को छोड़ दिया। इसमें विचार करना चाहिए, गोपों के मुख से कोई भी असंजक बात नहीं निकलेगी, सब तर्क जुक्ति इत्यादि के द्वारा प्रतिष्ठित, जुक्तिपूर्ण और शास्त्रीय होगी, कभी भी असंजक बातें उनसे नहीं निकलेगी। इसलिए जो कह रही है वो ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जब पति क्यों कहा है, अपत्य क्यों कहा, माता पिता क्यों कहा, पति केवल कहती ये नहीं, रास के समय में कृष्ण ने मुरली बजाई पूर्णचंद्र की, और उस समय में सारी गोपियां उस बंसी की ध्वनि का पीछा करते 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 जहां पर कि कृष्ण निर्जन में जमुना के किनारे बंसी बट पर खड़े थे, मानो अपने अपहित हृदय को, मन को खोजने के लिए दौड़ी बड़े वेग से, कपड़े उनके जो लटक रहे हैं नीचे नीचे, उस समय का श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कैसे वो दौड़ करके आए, एक एक दूसरे को देखी नहीं। उस समय में उन्होंने, उनमें से कुछ ऐसी थी जो अब उनके दल में है, उस समय में जिनको पुत्र था, पुत्रवती थी और कृष्ण के प्रति पूर्व राग भी था, बंसी वह सुनी और बेचैन हो गई, वो भी चली। तो जिनके बच्चे नहीं थे, किशोरियां थी, अभी नवविवाहिता थी, वो तो झट निकल गई जोग माया के प्रभाव से, और जोग माया ने इन लोगों को वहीं पर रोक दिया। किनको? बच्चे वाली को। क्यों रोक दिया? ये भक्ति राज्य में ये ठीक नहीं है, भक्ति करेंगे किंतु किस राष्ट्र इत्यादि में कृष्ण से सम्मिलित नहीं हो सकते, इसलिए जोग माया ने रोक दिया। और फिर जब ये अपत्य का भाव माने पुत्र का भाव और जो कुछ भाव था वो सब दूर हो गया, कैसे? कृष्ण को हृदय में आलिंगन किया, उनके जितने मंगल हैं सब मंगल क्षीण हो गए। मंगल माने क्या? जो पति उनको आदर करते थे, पतियों के प्रति इनकी श्रद्धा थी, बच्चों के प्रति थी, ये मंगल सब दूर हो गया। और तीव्र बिरह ताप भूता अशुभा, अब तीव्र बिरह ताप से उनके जो अंदर में कुछ मलिनता थी वो सब भी, तो क्या मलिनता होगी? अपराध नसारी कुछ नहीं, भाव एकांतिक कृष्ण में जो होने का था, पहले पतियों में भी था, इनमें भी, किनका? जिनको बच्चे हैं। इसलिए जब वो धुल गया तो मानो वो कायाकल्प हो गया, और तब फिर वही रास्ते में चलिए, उनको देख करके ये कह रही है, कौन? श्रीमती जी कह रही है, ये साक्षी ये है। पुत्रों को भी छोड़ दिया, और माता पिता किस लिए कहा? पति को कहने से हो जाता है? नहीं, जो अभी कुमारियां हैं जिनकी अभी शादियां नहीं है, धन्य इत्यादि बहुत सी ऐसी हैं जो अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह के योग्य हैं, और उसी समय में कृष्ण के प्रति पूर्वानुराग हो गया, और वो नित्य सिद्धाओं के संग में कात्यायनी की पूजा कर अंत में वो भी सम्मिलित हुई हैं। तो उन लोगों के लिए माता पिता इत्यादि का कहा, अस्मा भी पतय धन्यादि कन्या भी, हम लोगों ने अपने पतियों को और धन्य इत्यादि ने पित्रादि सबको इसी रूप में समझना चाहिए, कोई संदेह नहीं आने चाहिए गोपियों की बातों में, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी खोल करके बतला रहे गोपी जो व्यस्त है, हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, लोक लज्जा नहीं छूटती। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था उस समय द्रौपदी का कोई गला काट देता वो अच्छा होता ना, उसको नग्न करके दुर्योधन के जंग पर बैठा देता, उनके लिए कौन सा वरणीय था? मरना, लोक लज्जा छूटता नहीं। इसलिए यदि विष होती तो विष खा लेती, तलवार होती तो अपने को काट देती, किंतु ये चीजें थी नहीं, बस कृष्ण एकमात्र अवलंबन रह गए। इसलिए प्राण छोड़ना सहज है, राजस्थान में वो जौहरी व्रत एक होता है, जौहर व्रत, जिसमें उनके पति लोग लड़ाई में चले और वो लोग चिताएं अलग से साज रही थी, यदि हार गए वो लोग मारे गए तो आग में जल मरेंगे, और यदि जीत करके आ गए जब देखेंगे तो कोई बात नहीं। इसलिए पहले से तैयार करके चिता और धधक रही थी आग, पति सब उनके मारे गए, जब मुसलमान लोग आए तो बस उनके देखते देखते ही आग में सब मर गए। लज्जा एक ऐसी चीज है, उस लज्जा को हमने छोड़ दिया, और ऐसे हमारे प्रति अकृत चेता हमें छोड़ करके बिना दोष के चले गए, सुध एक बार नहीं ली, ऐसा अकृत व्यक्ति अकृतज्ञ न विद्यते, आज तक कोई जन्मा नहीं ऐसा अकृतज्ञ, उपकृत चेतो कोई उपकार हमारा नहीं किया, आज हम उन्हीं के मारे धर्म कर्म नष्ट होकर के आज हम वनों में बिलबिला रहे हैं, ये किसके लिए जानता है? तुम तो बड़ा अन्न भी नहीं कर रहा है, यदि तुम नहीं, तुम जानते तो तुम ऐसा नहीं करते, नु अहो नु नु संधे अस्मि अहो इद्रिशे अस्मिन कठोर। अहो इतना कठोर, इनसे संधि की बात हम नहीं कर सकती, सुलह की बात नहीं होगी, इससे हमारा क्या प्रयोजन? यदि वो हमको छोड़ सकता है तो हम इनको नहीं छोड़ सकते? जरूर छोड़ दो। नहीं नहीं पैर छोड़ो, जाओ कह दो जी आप संधि नहीं होगी। सोलुंठ वाक्य है, सोलुंठ माने क्या? गीता में गूढ़ रोष है, गूढ़ रोष को कहते हैं किसको? ऊपर से मीठी मीठी भी बातें कर रही है और भीतर में गूढ़ रोष भरा पड़ा है। चंद्रावली जी का एक उदाहरण उज्जवल नीलमणि में दिया है। कृष्ण कहीं से आए खंडित के बाद में, खंडिता होने के बाद में, आने की बात थी नहीं आए, और अन्न विनय करने लगे। उस समय में उनके ये अंगों को और लक्षणों को देख करके कह रहे हैं आइए पधारिए बैठिए, नीलोहित रुद्र जी आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। हंस करके ऊपर से नहीं मालूम होता है कुछ, किंतु ये सब ताना है, सीधी सरल बातों से भी ताना अधिक वो बाण उसका पहुंचता है। उनके साथ में, कृष्ण के साथ में मधुमंगल या सुबल था। मैं कहा जी आई ये तो आपको बड़े प्रेम से बातचीत कर रही है। कृष्ण ने तुम नहीं समझोगे, आज इतना गूढ़ इनका अभिमान हमारे प्रति है, दूसरा विश्व में कोई नहीं समझेगा, ये हमारे प्रति आज बहुत असंतुष्ट हो रही है। तरह तरह से मनाने की चेष्टा की, तो फिर यही जाकर के इसको कहते हैं सोलुंठ वाक्य। देखो आदि शब्द आदि निर्दयत्व, पौत्निष्ठ, परद्रोही, प्रेम शून्य, ये तुम्हारे प्रभु जी हैं। खूब गूढ़ कथाओं को बोलना, आक्षेप करना, आक्षेप माने निर्दोष निष्ठ इत्यादि, और अकृतज्ञ उनको बतलाना, इनको कहते हैं संजल्प। ये जल्प ये चौथा या पांचवा हुआ। वो अपने स्वाभाविक गति से उनके चरणों में प्रवेश करने की बार बार चेष्टा करता है और उसको वो दूर भगा रही है। थोड़ी देर में आकर के पुनः उनके चरणों में फिर गिरा। अब इस बार कहती है मृगयूरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रीम कृत विरूपा स्त्रीजीतः कामयानम बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद्धं च वत्ज तदलमसित सख्यैर दुष्ट जत्त कथा था। मृगयूरिव कपिंद्रम, तू जानता नहीं है, अभी छोड़ता नहीं हमारा पैर, बार बार गिरता है। उन्होंने कह दिया था जैसा न विनय करना, छोड़ो जल्दी से जाओ यहां से। उन्होंने सोचा कि ये कह रहा है, नहीं नहीं वो अत्यंत पवित्र है, तुम्हारे तुम लोगों के प्रति गाढ़ अनुराग है, नहीं तो हम तो भेजते किस लिए, इसलिए आप उनसे संधि कर रही अच्छा है। मैं तुमको एकदम निर्लेप देखता हूं, परम पवित्र देखता हूं, आपके प्रति कितना गाढ़ अनुराग है देखता हूं। इसको सुन करके और वो कुछ क्षुब्ध उठी। मानो कह रहा है अरे बड़े कोमल चित्त के हैं, बहुत उनका चित्त कोमल है। मैं जानता हूं तुम्हारे नाम ले लेकर के रात भर रोते हैं, उनको चैन नहीं आता। कहा गोपियों ने कहा जहां राधा जी का, यहाँ उनको चैन नहीं है तो मुझको भी पता है, बिना हमारी जाति को उनको चैन ही नहीं रहती। वो कोमल मन वाले हैं, सुनो मेरी बातें, और सब समय आप ही का ध्यान करते हैं और सब लोग सब समय आप ही की चर्चा करते हैं। इतना सुनकर के कुछ रोष हुआ श्रीमती जी को, अरे दूर हट, मैंने पहले तुमको कहा जाता चला जा, हमको क्यों तंग करता है तू? और बातचीन है, और बातचीन मैंने क्या, मूर्ख और नया, नए नवीन कोई सखा हो, नवीन कोई स्त्री हो ऐसा, और उसमें भी मूर्ख हो, उसको अरवाचीन कहते हैं। अरे हमारे तो बहुत दिनों के मित्र है ना, बहुत दिनों के मित्र है हम लोग उनको 14-15 वर्षों से जानती हैं, 16 वर्ष से जानती हैं, और तुम आज आया है ना, आज उनसे सीख करके आया है। हम उनके तत्व को नहीं जानती है मूर्ख अरवाची, तो हमको उनको सिखलाता है जो बड़े कोमल प्रवृत्ति के हैं, बड़े प्रेमी हैं, आप लोगों के प्रति उनका गूढ़ अनुराग हम नहीं स्वीकार करती। न केवलम स अयस्मिन नैव जन्मनि कठोरा, वो इस जन्म में नहीं, ये श्याम जितने रंग के वाले जिस तभी समय में सत्ययुग त्रेता द्वापर में हूं। और हमने तो सुना है ये यही जो धूर्त है श्याम, पहले जन्म में त्रेता युग में ये राम थे, और उसके पहले सत्ययुग में वामन थे। तो इनकी पिछली कार्रवाइयों को, करतूतों को हम जानती हैं। इसी जन्म में कोई कठोर हुआ, निर्दय हुआ, निष्ठुर हुआ नहीं, और अकृतज्ञ है ऐसा नहीं, किंतु पूर्व पूर्व जन्मों में भी हमने सुना है। पूर्णमासी जी के मुख से वो बतलाती है, वो तो भूत भविष्य जानने वाली देवी है, इसलिए उन्होंने बतलाया था कि ये जो काला है ये पहले और भी काला कितनी बार हो चुका है, और कभी कभी पीत भी हो जाएगा। सब रंगों को अपने अपने समय पर यह धारण करता है। जदा क्षत्रिय जात, अभी तो गोकुल में, पहले जबकि वो क्षत्रिय था, रामचंद्र के रूप में इस जगत में जन्मा, और क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके, क्षत्रिय धर्म अर्थात दीनहीनों की रक्षा करना, शुद्ध न्याय करना, साधु संतों को तंग नहीं करना, ये सब उनके क्षत्रिय के धर्म होते हैं। उसने क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया और मृगु की भांति, शिकार की भांति, कपियों में जो इंद्र हैं बादी का विरोध करके उसका वध किया, वो भी छल से वध किया। आमने सामने लड़ लेते तो कोई बात नहीं, बलि के सामने कोई भी लड़ नहीं सकता था, उसका पर था ब्रह्मा जी का कि जो कोई लड़ने आएगा उसका आधा बल इनमें चला आएगा, तो आधा आने से तो बराबर हो गया, और इसका जितना बल है वो तो रहेगा ही, इसलिए उसे डेढ़ा आदमी हो जाएगा, इसलिए उसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए बड़े बड़े रावण प्रभृति उसे हार गए, इसलिए सुग्रीव जी उससे डरते थे, यदि लड़ने जाएंगे हमारा बल ले लेगा और हमको मार डालेगा, इसलिए छिप करके मारा इन्होंने। उसी के लिए करें निर्दय गुप्त संता, अधर्म कथा भी तदुपाख्यान गया। उन्होंने जो मारा बलि को छल करके मारा, किस लिए मारा, उनका क्या हरण किया था, कुछ भी तो नहीं, उनसे कोई इसका संबंध ही नहीं था, पहले नहीं हमारे मित्र के पत्नी को हरण कर लिया और राज्य ले लिया, तो मित्रता के पहले ना पीछे, मित्रता के पहले तो उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया, उनकी स्त्री चली गई चोरी, बिना स्त्री के तो रह नहीं सकते, अब एक और स्त्री चाहिए, नहीं मिले तो, और नहीं तो उसी को लाना है, इसलिए उनसे मित्रता की, अग्नि की साक्षी देकर। जिस समय में दोनों में बाली में और सुग्रीव में लड़ाई होने लगी, रामचंद्र जी ने अपना एक गले की माला उनको दे दी, कहा यही चिन्ह रहेगा, नहीं पहले नहीं, पहले ऐसे ही लड़ रहे थे, और कहा जाओ उसको मारूंगा। जब युद्ध होने लगा तो उसका आधा बल ले लिया, और जब उसको परास्त करने लगा तो रामचंद्र जी ने कुछ नहीं किया, ऐसा मारा प्राण नहीं लिया केवल, ये जैसा भी भाई है मारेंगे नहीं, डर दिखला दे। वो रोते कलपते आए रामचंद्र जी के पास, आपने प्रतिज्ञा की थी ये मारेंगे और मारा नहीं, यदि मैं मर गया होता तो। कहने मित्र खेद है, तुम दोनों देखने में एक ही समान, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक समान रूप एक समान वीरता, इसमें निर्णय नहीं कर सका, यदि तुम ही कुमार देता तो, यदि बाढ़ लग जाता, इसलिए अब माला ले लो और तब जाओ। तो अपनी माला एक पहना दी, फिर उनको दिला और एक पेड़ की आड़ से धनुष बाण लेकर के उनको मारा, वो गिर गया। जब मरने में नहीं था रामचंद्र संग आए, फिर इसने पूछा कि आप लोग तो बड़े लोग धार्मिक कहते हैं और क्षत्रियों में परम धार्मिक, आपने मुझको अधार्मिक की तरह में क्यों मारा, क्या कारण था, आपने मैंने आपकी क्या चोरी की, आपके साथ में कोई शत्रुता नहीं थी, मित्रता भी नहीं थी, क्यों मारा? तो उन्होंने एक युक्ति बना करके अपने तरफ से ये कहा, अनुज बधु भगनी सुत इन्हें बिलोक, ये कन्या है चारों, इनके प्रति जो कोई कुदृश्य करता है मुझसे मारता होता, तो सब जगत का वो कहीं आप राजा हैं तो अपने राज्य के लिए, ये तुम्हारे राज्य में है, कोसला के अंतर्गत अयोध्या के अंतर्गत है, ये सारा विश्व उन्हीं का है, क्यों मारा? बाली ने पूछा। तो उन्होंने एक तर्क दिया, तर्क ऐसा है, एक मेमना थी, मेमना मैंने भेड़ का बच्चा, वो नदी में पानी पीने गया, इतने में एक बाघ ने उसे देखा, बाघ उसके पास आ गया, अब वो खाने के लिए तैयार है मारने के लिए, तो मेमना ने कहा जे मैंने तुम्हारी क्या बुराई की ये हमको मार रहे हैं, तुमने पानी गंदा कैसे किया, पानी गंदा किया, मैं पानी पीने आया देखा जे पानी गंदा कर रहा। तो मेमने ने कहा जैसे तुम ऊपर की तरफ में हो, उधर से पानी बह करके आता है, मैं यहाँ पर पानी पी रहा हूँ, तो इधर का तो गंदा हो सकता है, किंतु ऊपर का गंदा कैसे, नहीं है तुमने किया मार करके खा गया,
तेरे बाप ने किया,
हाँ तुमने नहीं किया, तुम्हारे बाप ने किया था। ऐसे ही ये सीना जोरी है, चोरी तो हाई भी है, चोरी किंतु सीना जोरी भी, ऐसे ये रामचंद्र है। देखो बंदरों को कोई मनुष्य मारता नहीं, उनका नाम है ना बानर वानर, इसलिए मनुष्य को मारने से जो हत्या का पाप लगता है उसको भी यही लगेगा, किंतु उन्होंने इतने निष्ठुर हैं, क्षत्रिय धर्म को ताक पर रख दिया और निष्ठुर की भांति क्षत्रिय धर्म के विपरीत अधार्मिक की भांति उसे मारा। बैत भी ऐसा नहीं करता, बैत सबको मारे, पक्षी कीट पतंग जानवर लेकिन तो बंदरों को नहीं मारता, इन्होंने उसको भी जलांजलि दे दी और प्राप्ति लुप्त से बास नहीं। व्याधो बानरा नहीं नंती, व्याध भी बंदरों को बात नहीं करता है, इसलिए क्यों उसका मांस खाया नहीं जाता, हिरण होता मार दिया, अच्छा मैं मार करके उसका मांस खाया, इसका मांस क्या करेंगे, नहीं खाएंगे। और देखो और बताऊं, गोपी कह रही है श्रीमती जी, स्त्री अब सूर्पनखा उनके पास में आई, क्यों आई, अरे तुमने राज्य छोड़ दिया तो अपनी बीबी को साथ में क्यों लिया, स्त्री जीता बिना हाथ में हाथ मिलाए चल नहीं सकते क्यों? और कहते हैं कि मैं स्त्री जीत हूं, स्त्रियों को मैंने जीत लिया है। स्वप्नखा ने आपको देखा, जटाजूट बांधे तीर धनुष यहां पर अत्यंत सुंदर स्वरूप दुर्बादल श्याम, चंद्र भी जिनका मुख देख करके लज्जित हो जाए, आंखें बड़ी बड़ी कमल के समान, इतना सुंदर देख करके वो मुग्ध हो गई तो क्या हो गया? पशु पक्षी की पतंग भी उनको देख करके मोहित हो जाता है। तो ये स्वप्नखा का दोष है ना, उनके रूप को था दोष, दूसरे के पास क्यों नहीं गई? और लोक लज्जा छोड़ करके आप ही को चाहा, आप मेरे पति हैं हूं और मैं आपकी पत्नी बनू, तो स्त्रियां ऐसा प्रस्ताव कर सकती हैं क्योंकि काम में मुग्ध हो गई हैं, किंतु इसका मूल कारण आप हैं, आपने क्या किया उस स्त्री के लिए, बचाने के लिए इस स्त्री का वध किया जो आपको चाहती, इसलिए स्त्री जीता कामयानाम, वो पति रूप में चाहती है और एक दूसरी स्त्री के लिए आपने दूसरी स्त्री का नाक कान काट, अरे मार देते स्त्रियों का या पुरुषों के लिए क्षत्रिय के लिए यह अपराध है, यदि किसी स्त्री पर हाथ उठाए या कोई भाग रहा है उसके ऊपर में अस्त्र शस्त्र, यह वीरों का काम है। तो आपको पति के रूप में जाती कह देते जी भाई भी शादी नहीं कर, नाक कान क्यों काट लिया? कि आप दूसरे भी से शादी न करें, इसे कोई प्रेम व्यवहार न, इसलिए काट लिया। कितना निष्ठुर कितना निर्दय। दूसरी स्त्री ने कहा प्रिय ये हरण हमको चाहिए, जीवित यदि पकड़ लाओ तो अच्छा है, मैं कैकेयी मैया को दूंगा उपहार, और यदि नहीं पकड़ा गया तो मार करके भी आते, इसका मृग छौना बड़ा सुंदर होगा, ये भरत को दूंगा, उसमें बैठ करके आसन जम नम नियम प्रणायाम इत्यादि करेंगे, इसको किसी प्रकार से चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा जे नहीं मत जाइए, ये हमको इसमें षड्यंत्र मालूम पड़ता है, ऐसा मृग होता ही नहीं। पत्नी स्त्री ने कहा जा चुप रहो देवर, तो तुम चुप, उसके कहने से वो चुप हो गई और उसके कहने से वो चल पड़ा। गति क्या हुई? तो ऐसे कपटी से धूर्त से हमें कोई संबंध नहीं है, हम संधि नहीं करेंगे। अच्छा तुम ही बतलाओ, ये तो क्षत्रिय रहा, क्षत्रिय में किसी के प्रति ऐसा अन्याय भी हो सकता है, किंतु ब्राह्मणों करके कैसा अन्याय किया? कश्यप का पुत्र बना, वो भी धोखे से घर में आ गया अदिति के, और घर में आकर कहीं निकल पड़ा, एक दिन की भी देरी नहीं हुई, और कुछ दिनों के बाद में छल वेश बना करके छद्म वेश 52 अंगुल का केवल, और चला गया परी महाराज के दरबार में और हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से कहा परी महाराज ने क्या चाहिए? तो चुप रहे, दो बार कहा चुप रहे, तीस बार तो चुप रहे, चौथे बार फिर उन्होंने कहा जी बोलिए आपको क्या, मैं आपकी सेवा करूं? तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी के पिताजी प्रह्लाद महाराज आपके वंश में कैसे दिव्य रत्न हो गए, बलि बाण विश्व की विश्व परवा ना कहो, ये सब बड़े बड़े महान लोग हो गए हैं जो अपने वचन को कभी नहीं छोड़ा, आप उसी वंश में आए हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि अपने वचन को आप तोड़ेंगे नहीं, अतः तू बागदान देकर के फिर से मोड़ेंगे नहीं, सब तरह से कह करके भैया ये बड़ा ये लड़का तो छोटा है तो बुद्धि तो बड़ी विशाल है ये, अच्छा अच्छा तुम मांग लो कुछ, हमको त्रिपाद जमीन चाहिए, तीन पैर खिलखिला करके हंस उठे, तुम छोटे तुम्हारा खरबा कृति बुद्धि भी खरबा कृति, अरे तुम सुंदर पत्नी मांग लेते, अश्वपरांग मैं दे देता, राज्य का राज्य मांग लेते दे देता, जो कुछ भी चाहता वही दे देते। तुम तीन हाथ जमीन चाहते हो, तीन पाद जमीन क्यों? मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मणों को अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, इसलिए हमको तीन ही पद भूमि चाहिए। खूब पक्का विश्वास जमा लिया, ये अच्छी बात है। संकल्प कीजिए, संकल्प किया, शुक्राचार्य ने बाधा दिया तो उसकी आंख को फोड़ दिया। इसके बाद में संकल्प करने के बाद में छोटी चीज, बड़ी चीज के अंदर में छोटी चीज रह सकती है, किंतु छोटी चीज के भीतर में बड़ी चीज रहे, ये बड़ा आश्चर्य है। नहीं? उसने न जाने क्या किया, अपने छोटे से शरीर से इतना लंबा पैर बनाया, अद्भुत, और सारे विश्व को, पृथ्वी को एक डग से माप लिया। बलि महाराज जी ने ये तो नहीं कहा ये तुम नया पैर निकाल करके मापोगे, तुमने जिस रूप में बर मांगा था उस रूप में हमने बर दिया है, तो तुम छोटा है तो छोटे पैर से मापो, तब तो देंगे, ये कह सकते थे। किंतु बलि महाराज ने बड़े उदार थे, दूसरे पैर से उन्होंने ब्रह्मांड तक भूर भुआ सह महाजन तप सत्य अतल तलातल पाशाल रात असल, ये सबको दूसरे पैर से एकदम पूरा मार का। जब कहां पैर रखो बतलाओ, और नहीं तो तुम भ्रष्ट होगा अपने सत्यवाद। गोपियां कह रही है कितना धार्मिक, सब ब्रह्मांड तीसरा के लिए उन्होंने कहा जी कुछ नहीं है आपको, उन्होंने कहा जी हमको माफ दीजिए, अर्थात तो अपने शरीर को भी दे दिया। और इसने क्या किया, सबके सामने उनको बांध कर और जमीन पर फेंक दिया, नाग पास से बांध। उस समय प्रहलाद महाराज ये ब्रह्मा जी आए, अपने पितामह को देख करके बलि महाराज की आंखें सजल हो गई, दुख बूंदे गिरने लगे, रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या प्रभु, अरे ऐसे ही नाम लेने से उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, और इसने अपना सर्वस्व राज्य इत्यादि देह तक समर्पित कर दिया, फिर भी इसको बांध रखे हैं। प्रहलाद महाराज की तरफ कृष्ण ने देख करके, इस बामन जी ने देख करके फिर उनको खोल दिया। गोपियां करेंगे देखो तो ऐसा ठग, कौवा, कौवा भी काला होता है, तुम्हारी जाति का ये श्याम रंग का श्याम रंग में मिलता है, अब तुम्हारा तुम जो है उसका दूत वो भी काला, तो ये काले कैसे होते हैं, एक आंख का तो कौवा होता है, दो आंख नहीं, रामचंद्र जी ने फोड़ दिया था। तो ये कौवा, कौवा क्या करता है देखा जे, यहाँ पर बंदरों को देखते हैं ना, आप फल लेकर के आइए, एक भी फल मर तक नहीं आएगा, बंदर सब ले लेंगे, डरा करके धमका करके, जैसे ही वैसे ही कौवे टोकरी में कोई मालपुआ लड्डू पूरी कचौड़ी ले जा रही है कोई स्त्री, और स्त्रियों को देख करके समझिए ये भीरू स्त्री है, समझ जाते हैं पहले से। पशुओं में भी ऐसा होता है, जानते हैं बंदर लोग पुरुषों को आक्रमण नहीं करें, देखें ये तेज है ना,
चश्मा नहीं है,
अरे वो देखा जी कैसा है, वो मरकट आती है, उनको कुछ चल नहीं सकता, देखो समझते हैं। हम लोग पहले से चौकोना रख करके कुछ हाथ में रखते हैं, हम लोगों के पास नहीं, या कोई भी तेजस्वी हो वो समझ जाते हैं कि कैसा आदमी है, डरपोक आदमी है, समझ जाते हैं। पहले ऐसा कर करके देखते हैं, ये डर गया तो वो बाघ बन जाते हैं। तो ये कौवे हैं, टोकरी में से स्त्रियों की सब कुछ ले लेते हैं, और कौवा काव 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 का करके अपने भाई हजार को बुला लेते हैं, और सभी मिलकर के उसको खाते भी हैं, ठुकराते भी हैं, ऐसे ही है। इनसे कैसे संधि हो सकती है, तुम भी बतलाओ। उसी तरह से ये हमारा सर्वस्व छोड़ करके त्याग करा दिया और हमें छोड़ दिया। ये असित काले लोगों का ही ये दोष है, सब कालों में यही बात है। इस पर भौंरा कुछ गुनगुनाने लगा, कहा जी भौंरे को कुछ रोष हो गया देखा उन्होंने, और उन्होंने सुना अपने भाव नेत्रों से, अपने भाव कर्णों से सुना, ओहो मन भ्रमर कर रहा है, गुनगुन करता हुआ, ओहो पर निंदा कर रही है, आप दूसरे की निंदा कर रही हैं और फिर भी उसी की बात चलाती हैं, अरे जब छोड़ देना है तो छोड़ ही देना है, जब जानते हैं ये बुरा आदमी है तो उसका फिर चर्चा मत करो, किं शुद्ध चित्ता से, अरे तुम लोगों का शुद्ध चित्त तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए, ऐसे निंदा करना नहीं चाहिए और निंदा करने के पहले उसको छोड़ देना चाहिए, तो आप तो छोटी ने उसी के बार बार उसी का ही प्रसंग कर रही। तस्य कथाया, ओहो कोई भी व्यक्ति एक बार भी उनका संग कर ले तो उनका प्रसंग नहीं छोड़ सकता, संग और प्रकृष्ट रूप से संग प्रसंग, प्रसंग माने क्या, उसके बात विषय में बातचीत करना, उसको छोड़ सकती हैं किंतु हम उसके प्रसंग को नहीं छोड़ सकती। दुष्टजा तत्कथार्थ, वो कथाएं हमको दुख देती हैं, ये बात ठीक है, किंतु उनकी कथाओं को नहीं छोड़, क्यों, सकृतार अथर सुधांग सांग मोहिनी पाए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती अपने अधर रस का पान करा दिया, इसलिए हम उसके प्रसंग को नहीं छोड़ सकते, इसलिए निंदा करें प्रशंसा करें किंतु उसका प्रसंग जरूर रहता है। अस्माभि तत् कथाया अपि अर्थो न वक्तुम, कोई अर्थ नहीं है, हम जानती हैं तभी उसकी बातें हमसे छूटती नहीं है, निंदा हो और ना हो सच बात कहने में क्या बात है, हमने जो कहा उसमें तुम बतला, हमने कोई झूठ बात कही हो तुम तर्क से युक्ति से काटो, क्या वो राम में ये दोष नहीं है, क्या बलि महाराज में दोष नहीं है, इन्होंने हमारा इतना सर्वनाश किया, सब कुछ छुड़ा दिया, ये बात झूठ है, निंदा भवत हुआ न भव, निंदा हो और न हो यथार्थ भाषण तेन अनिंदा, यथार्थ बात कहना निंदा नहीं है, उस भ्रमर से कह रहे हैं, असौ तब तुम असत्य ए वेदी भाव, हम लोग इस प्रसंग को नहीं छोड़ सकते, सतु अस्मा भी त्यक्त हम उसको उसको छोड़ सकती हैं किंतु उनके कथारूप अर्थ को नहीं, तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, इसलिए तो उसने ये पिलाया अमृत, अब हमको अजर अमर कर दिया, ये ऐसी कोई भी नहीं मिलेगी, इसलिए ये जलती रहे मरते रहे छटपटाती रहे और हम देखते रहे, यही तो उसकी क्रुएलिटी है। यहाँ पर विभदे, विभदे माने विशेष रूप से वध किया बानर का, इसे हृदय काठिन्य उनका सूचित होता है, कृष्ण को बड़ी कठोर नित्य निष्ठुर बतला रहे, स्त्री जीता अर्थात स्त्री के द्वारा जीता हुआ, स्त्रियों ने इनको जीत लिया, इसलिए कामित्व स्त्री जीता, स्त्री के द्वारा जीता हुआ, स्त्री को जीत लिया ऐसा नहीं, बलिमापी ये धौक्त, धौक्त माने धूर्त, और छली ठगी, ठग बलि को ठगा, बलि महाराज जी को, इसलिए यहां पर ऐसा होता है, इसको कहते हैं और जल पर बना करके नहीं कह रही, अपने आप तन में होकर के कृष्ण के रंग में रंग करके कह रही, ऐसा आज तक कृष्ण को किसी ने नहीं कहा, इसलिए कृष्ण भौरे होकर के उनके इनको परिहास को गालियों को बड़े प्रेम के साथ में सुन रहे हैं, जो ब्रह्मा की स्तुति नहीं सुनते, और तब वो पीछे की क्या बात होगी अगले कल बतलाएं, आज ही हम करते हैं वंशा कल्प कल हम लोगों का व्रत समाप्ति है, सवेरे आप लोग स्नान इत्यादि से खौर काज इत्यादि से निपट लगे, जिनको खौर काज इत्यादि करना है, और दोपहर में उसके बाद में हवन इत्यादि का कार्य होगा, फिर वैष्णव की कुछ हरि कथाएं होंगी, और इसके बाद में ठाकुर जी को जो चार महीने तक आप लोगों ने छोड़ा था वो विभिन्न चीजें भी ठाकुर जी को भोग लगेगी, और कल हम लोग व्रत का समापन करेंगे, किंतु व्रत का समापन आप लोग मत करेंगे, तो हरि कथा जैसी चल रही है वैसे रखेंगे और ऐसे ही नियमों का पालन करेंगे जो एक महीने तक आप लोगों ने नियमों का पालन किया और इसी तरह से क्रमशः अपने भजन साधन को बनाएंगे। इन सब चीजों में हम लोगों का प्रवेश।